बच्चे और बड़े अनोखी गो मालूमा
अच्छा
तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम आओ देखें बच्चे और बड़े
बात है
बच्चे और बड़े
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فري الصلاه والسلام عليك يا رسول الله
والصلاه والسلام عليك يا رسول الله
وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله
وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله
الصلاه والسلام عليك يا نبي الله
الصلاه والسلام عليك يا نبي الله
وعلى اليك واصحابك يا نور الله
وعلى اليك واصحابك يا نور الله
प्यारे बच्चों और किड्स मतनी चैनल के नाज़रीन किड्स मतनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव और यूनिक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं मरहबा कहते हैं वेलकम कहते हैं और इस प्रोग्राम का नाम है बच्चे और
बड़े।
जी हाँ बच्चों क्या नाम है
बच्चे और बड़े।
हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सी दीनी मालूमात तो दी जाती है मगर इस प्रोग्राम की एक खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ साथ एक गेस्ट भी होते हैं जो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी और दीनी बातें बताते हैं जिनसे बच्चे सवालात करते हैं और वो इनके जवाबात के साथ साथ उन्हें बहुत सारी गाइडेंस भी देते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मतनी चैनल के नाज़रीन किड्स मतनी चैनल का काम है आप तक प्रोग्राम पहुंचाना। मगर आपका काम क्या है आपका काम ये है कि आपने इस प्रोग्राम के साथ अव्वल तक आखिर शामिल रहना है ताकि आपसे कोई दीनी मालूमात मिस ना हो जाए। तो आज के हमारे साथ गेस्ट हैं मोहम्मद फहद मतनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जी फहद साहब आपकी मसरूफियात क्या हैं आप कुछ बताएं?
अल्हम्दुलिल्लाह जामतुल मदीना में तदरीस के साथ साथ निज़ामत भी है और साथ इमामत का सिलसिला भी है और साथ कुछ बिजनेस का सिलसिला भी है अल्हम्दुलिल्लाह।
जी तो अगर आपकी इजाज़त हो तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। प्यारे बच्चों और किड्स मतनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हम शामिल करते हैं तिलावत कुरान पाक जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नोमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी तो कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे?
आज मैं सूरह काफिरून की तिलावत करूँगा।
सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
سبحان الله ما شاء الله
سبحان الله ما شاء الله اللہ پاک آپ کے آواز میں مزید برکت عطا فرمائے
آمین
اللہ پاک ہمیں اور آپ کو مدینہ دکھائے آمین
آمین
جی تو بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک کلام
बच्चे और बड़े।
जी तो कलाम के लिए हमारे साथ हैं फैजान भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी तो फैजान भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे?
क्या महकते हैं महकने वाले।
सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله. کیوں مہکتے ہیں مہکنے والے، کیوں مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں وہ پیچھے بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے گئے والا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے بھٹکنے والے. اور سنیو ایسے مدد مانگے جا، سنیو سنیوں سے مدد، سنیوں سے مدد، سنیوں سے مدد مانگے جاؤ، مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے بکنے والے، ہاں بڑے بکتے گئے بکنے والے، ہاں کیا مہکتے کف دریا دریا کرم، کف دریا کرم ہے رضا، رضا رضا، کف دریا کرم، کف دریا کرم، کف دریا کرم چلکنے والے، ہاں پانچ فوا چلکنے والے، ہاں کیا کیا حق دے ہیں مہکنے والے.
سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی بھی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حج عمرہ کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے، آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس متنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات.
بچے اور بڑے، بچے اور بڑے.
پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے مہمان سے سوالات کریں گے، اور ہمارے مہمان ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے. چلے پھر ہم بڑھتے ہیں آڈینس کی طرف اور لیتے ہیں ان سے سوالات. جی تو سب سے پہلے کون سوال کرے گا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا زیادہ بولنا اچھی عادت ہے؟
جی زیادہ بولنا اچھی عادت ہے یا نہیں؟ اچھا چلے آپ ہی بتائیں کیا زیادہ بولنا اچھی عادت ہے؟ نہیں بالکل نہیں، زیادہ بولنا اچھی عادت نہیں ہے، کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے، وہ زیادہ کیا کرتا ہے؟
غلطی
کرتا ہے۔ آپ جب زیادہ بولیں گے تو زیادہ غلطیاں ہوں گی، زیادہ غلطیاں ہوں گی تو پھر ہم گناہ میں بھی پڑ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم معافی مانگنے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ بولیں گے تو غلطیاں بھی کریں گے۔ اس پر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ باتونی اور بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ جو باتیں کرتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں، باتونی ہوتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر باتیں کرتے ہیں، مطلب اتنی سی بات ہوتی ہے اتنی بڑی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے زیادہ ناپسند باتونی اور بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے والے، سب سے زیادہ ناپسند۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کون سی باتیں کرنی چاہیے؟ اچھی باتیں کرنی۔ آگے
جی، اب کون سوال کرنا چاہے گا؟ جی کریے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے، کہتے ہیں پہلے تو لو بات میں بولو، اس کا کیا مطلب ہے؟
ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنی ہے، بغیر سوچے بات نہیں کرنی، بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنی۔ جب بھی آپ بات کریں گے پہلے سوچیں گے جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں، تو پہلے سوچ تو لو بعد میں بولو۔ آگے
جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عبدالحادی ہے۔
ماشاء اللہ۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں دوست گونگا گونگا بولیں گے تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہاں بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، خاموش رہیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ گونگا ہے، ارے خاموشی ہے، کچھ بولتا ہی نہیں، لگتا ہے خاموش رسالہ پڑا ہے، خاموش شہزادہ لگتا ہے، یہ رسالہ پڑ گیا ہے۔ تو بھائی خاموش رہنا ہے، کہاں رہنا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاموش رہنا کہاں رہنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اب میں خاموش رہوں کچھ بولوں ہی نہیں، ضرورت کے وقت بھی نہ بولوں تو لگے گا نا خاموشی تو گونگا ہے، تو ضرورت کے وقت بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا، اس وقت خاموش نہیں، اب فضول باتیں کرنے سے اب بچنا ہے، اب خاموش رہنا ہے، ہر وقت بولتے بھی نہیں رہنا اور ہر وقت خاموش بھی رہنا کہ جو اچھی باتیں ہوں وہ بھی خاموشی دکھتا رہے، پھر نیکی کی دعوت کیسے دیں گے آپ، پھر قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے آپ، پھر اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ تو ہر وقت ہر جگہ خاموش بھی رہنا، اچھی باتیں بتانی ہے اور پھر بری باتوں سے خاموش رہنا ہے۔ تو یہ آگے سوال کریں
جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد احسان ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ بچے بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں، انہیں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟
اچھا کچھ بچے بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں، آپ تو نہیں کرتے نا؟ ہاں آپ نہیں کرنے بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب انہیں سمجھائے کیسے؟ اب انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے فرامین بتائیں، ان کو بتایا جائے کہ سرکار اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، ان کو یاد دلایا جائے، ان کو ڈرایا جائے، سمجھایا جائے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سمجھانا، ہم ان کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، کیا اس طرح کی باتیں، بری باتیں نہیں کرتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے اللہ
ناراض
ہوتا ہے، ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ اب پھر بھی اگر نہیں مانتا तो अब उनके साथ बैठना नहीं है, हमें कौन से दोस्त बनाने? अच्छे दोस्त बनाने। कौन से दोस्त बनाने हैं? अच्छे दोस्त बनाने। और कौन से अच्छे दोस्त भाई? जो अच्छी बातें भी करते हो, हैं, नमाजें भी पढ़ते हो, नेक भी हो। और उनकी सोहबत में बैठेंगे कि नेकों की सोहबत में बैठने से बंदा नेक हो जाता है। मिसाल के तौर पर इस पर मिसाल भी दूँ, आप इत्र की दुकान पर गए, आपने इत्र खरीदी नहीं, इत्र लगाई नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंदर से महक आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुशबू की दुकान में गए थे। अगर आप किसी लोहार की दुकान पर चले जाते या ऐसी दुकान पर जहाँ चिंगारी होती, तो कुछ ना कुछ चिंगारी आपके कपड़ों पर ही लग जाती, या कुछ ना कुछ जंग आपके कपड़ों पर ही लग जाता। तो मिसाल यही है कि अच्छों की सोबत में बैठेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे, हम भी क्या होंगे?
अच्छे
बनेंगे। और बुरे की सोबत में बैठेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। तो लिहाजा किस सोबत में बैठना है? अच्छी सोबत में बैठना। आगे,
अगर कभी गुस्से में कोई गलत बात कह दे तो हमें क्या करना चाहिए?
जी, तो बहुत प्यारा सवाल किया। अगर कभी गुस्से में कोई गलत बात बोल दे, अच्छा इसमें देखें दो पहलू हैं, आप बोल दें या कोई और बोल दें, हैं? आप भी तो गुस्से में बोल सकते हैं ना, हम भी बच्चे हैं, हम भी बशर हैं, हम भी गलती हो सकती है, तो हम भी गुस्से में कुछ गलत बात बोल सकते हैं। अगर हमसे गलती हो जाए, हम अगर गुस्से में कोई गलत बात किसी को कह दें, तो अब क्या करना है? अब उससे माजरत करें। पहली तो ये है कि गलत बात हो नहीं है, और दूसरा ये है कि गुस्सा भी नहीं है। गुस्सा क्यों आना है भाई, हमारी इतनी बड़ी उम्र थोड़ी है अब गुस्सा करें, तो बड़ी उम्र को भी गुस्सा क्यों करना है? सही है, तो पहले तो गुस्सा आना नहीं चाहिए। अगर आ गया और अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत बात कह दी, फिर क्या करें? माजरत करें, माफ़ी मांगे। कि माफ़ी मांगना जो है ये पसंदीदा अमल है। माफ़ी मांगना क्या है? पसंदीदा अमल। और अगर कोई गलत बात कह दे, अगर कोई गलत बात कह दे, तो आप उसे माफ़ फरमा दें। सही है कि माफ़ करना अल्लाह पाक को पसंद है, कि माफ़ करोगे तो माफ़ किए जाओगे, माफ़ करोगे तो
माफ़
किए जाओगे। हाँ, अगर आज हम किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी हमें माफ़ फरमाएगा। सही है, तो अगर पहले तो गलती नहीं करनी, गलती हो गई तो माजरत कर लेनी है, कोई और अगर गलत बात कहे तो माफ़ कर देना है। सही है जी, आगे सवाल
बात भाई, मेरा एक सवाल है, जैसे कि बच्चों कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता, तो आप कुछ ऐसा तरीका बताएं कि कंट्रोल भी हो जाए गुस्सा।
हाँ, गुस्से में बहुत आ जाते हैं बच्चे आजकल, हैं, गुस्सा आ जाता है ना, अम्मी मुझे ये चाहिए नहीं मिला, और मेरे को तो चाहिए, हैं, ऐसा गुस्से में आ गए, अब मुझे कोई चीज़ मांग ली, मिजाज के मुआफिक नहीं कोई बात, गुस्से में आ गए, चीज़ें फेंक देते हैं, अच्छा गिलास भी तोड़ देते बातों का, हैं, मुझे तो चाहिए, अब जिद कर लेते, हैं, स्कूल में भी हो जाता होगा सर, सर ने मार दिया, सर ने कुछ बोल दिया, गुस्से में आ गए, करना क्या चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। सही है, ताकतवर वो नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, वो ताकतवर नहीं है। ताकतवर कौन होता है? जो गुस्से को पी जाए, गुस्सा आते हुए अपने आप को कंट्रोल कर ले। सही है, कुदरत के बावजूद भी गुस्से को कंट्रोल करे, माफ कर दे, अगर आपके कुदरत थी लेकिन माफ कर दी। सही है, तो गुस्से को आने नहीं देना, समझ गए, और गुस्सा करना भी नहीं है किसी के साथ भी, समझ रहे हैं? अच्छा चलें,
यानी सोच समझ कर बातें किया करें, जो मुंह में आया बगैर सोचे नहीं बोलना चाहिए, वरना कई मर्तबा बोलकर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जी, तो हमारे फहद भाई ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए और बच्चों ने भी बहुत इन्फॉर्मेटिव सवाल किए थे। चलिए अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कुछ अनोखी इन्फॉर्मेशन।
बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े।
तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, अभी हमें फहद भाई कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें बताएंगे, आपने इनको याद रखना है, हो सकता है इसके बाद आपसे कोई सवाल भी हो सकता है। जी फहद भाई, आप हमें आज कौन सी बात के बारे में बताएंगे?
हाँ, आज की जो इन्फॉर्मेशन है ना, बड़ी यूनिक और अनोखी है। हम अल्लाह पाक की एक ऐसी ज़बरदस्त निशानी की बात करेंगे अभी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? हमारे तो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह पाक की शान है और उसका ताल्लुक हमारे जिस्म से है। प्यारे बच्चों, जरा अपने हाथों की उंगलियों पर गौर करें। देखिए, गौर करें उंगलियों पर, जिन्हें, अच्छा, उंगलियों के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर गौर करें, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोड़े। क्या कहते हैं? पोड़े, फिंगर टिप्स। इन पर आपको बहुत सी बारीक सी लकीरें और निशानात नजर आ रहे होंगे। देखें, आ रहे जी। इन निशानात को इंग्लिश में फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
फिंगरप्रिंट्स।
आपने देखा होगा कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती होगी, लोग कहते होंगे फिंगरप्रिंट्स लगाएं अपने हाथों के निशानात दें, तो ये फिंगरप्रिंट्स कहलाते हैं। जी बच्चों, आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 8 अरब, जी 8 अरब से ज़्यादा इंसान मौजूद है, 8 अरब के ज़्यादा। और अल्लाह पाक की शान देखें कि इन अरबों इंसानों में से किसी भी इंसान की उंगलियों के निशानात एक जैसे नहीं होते हैं। अल्लाह की शान, अरबों मुसलमान, अरबों इंसान, लेकिन अरबों इंसानों के उंगलियों के जो निशानात हैं, बारीक बारीक सी जो लाइनें हैं, फरमाया वो एक जैसी नहीं होती। यहाँ तक के कोई जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए, जुड़वा बच्चे होते हैं ना, भाई बहन पैदा हो गए, दो भाई एक जैसे पैदा हो गए, दो बहनें एक जैसे पैदा हो गए, या भाई बहन एक साथ हो गए, अगर उनकी आवाज़ भी एक जैसी, शक्ल भी एक जैसी, फरमाया लेकिन फिर भी उनके भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं, हाथों के उंगलियों के निशानात जो हैं, वो एक जैसे नहीं होते। और बच्चों, यहाँ एक और बहुत अनोखी और हैरत की बात क्या है पता है? अगर किसी वजह से हमारी उंगलियों की खाल उखड़ जाए ना, बातों का हो जाता है, खाल जल गई है, चोट लग गई, या कुछ ऐसा जख्म हो गया जिसके वजह खाल को काटना पड़ गया, तो फरमाया किसी वजह से उंगलियों की खाल उखड़ भी जाए, तो फरमाया फिर दोबारा से जब वो खाल आती है तो वैसी ही निशानात होते हैं जैसे पहले थे।
सुभान अल्लाह।
इधर उधर नहीं होते, यानी कि वो निशानात जिस्म में, अल्लाह पाक ने उन निशानों को हमारे जिस्म में इतना पक्का डिज़ाइन किया है कि नई खाल आने पर भी इनमें मामूली सा भी फर्क
नहीं आता।
तो प्यारे बच्चों, ये बात तो हमें साइंसी रिसर्च से मालूम हुई, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 1400 साल पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह कियामा, ये 29वें पारे की सूरत है, उसमें इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बला कादिरीन अला अन नुसवी बनाना। तर्जुमा कज़ुल इरफान, क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि उसके उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। बच्चों, इस आयत से मालूम हुआ, इस आयत में अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया है कि क्या काफिर ये समझता है कि मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते? फरमाया क्यों नहीं, उसकी हड्डियों को जमा क्यों नहीं कर सकते? फरमाया बल्कि इंसान की उंगलियों के उन बारीक पोरों और निशानात को भी दोबारा वैसे ही बना देते हैं जैसे वो दुनिया में थे।
अल्लाह।
तो प्यारे बच्चों, जब भी आप अपने हाथों को देखें तो अल्लाह पाक की इस अजीम कुदरत पर गौर करें और ये नियत करें कि इन हाथों से हमेशा अच्छे काम करेंगे, इन हाथों से हमेशा अच्छा लिखेंगे, इन हाथों से कुरान पाक को पकड़ेंगे, इन हाथों से इल्मे दीन की किताबों को पकड़ेंगे, इन हाथों से खाने काबा के गिलाफ को हाथ लगाएंगे, इन हाथों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अतराफ की मसाजिदों को, अतराफ के एरिया को हाथ लगाएंगे, इन हाथों से अच्छे काम करेंगे, इन हाथों से नेकियों के काम करेंगे, इन हाथों से नेक काम करेंगे, इन हाथों से सदका देंगे, इन हाथों से किसी की मदद करेंगे, इन हाथों से किसी को खुश करने वाले काम करेंगे। तो नियत करें इंशाल्लाह इन हाथों को अल्लाह की रजा के कामों में लगाएंगे इंशाल्लाह।
जज़ाकअल्लाह खैर फहद भाई, आपने बच्चों को बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताई। जी तो बच्चों, वह हमारे गेस्ट फहद भाई ने आपको बहुत इन्फॉर्मेशन और अच्छी बातें बताई। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हरूफ सवाल जवाब।
बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े।
जी तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि आपको एक हर्फ दिया जाएगा और उसके उस जो जुमला होगा जिसमें वो हर्फ होगा उसके बारे में थोड़ी मालूमात दी जाएगी। जैसा कि आपको तैयारी भी करवाई गई होगी, तो तैयारी के मुताबिक जिस लफ्ज़ के अंदर ये हर्फ आता है वह आपने लफ्ज़ बताना है। जी तो शुरू करें।
जी
तो हमारे साथ मौजूद है एक टीम ए और टीम बी, इन दोनों के दरमियान में क्विज होगा और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हुए इंशाल्लाह आज की वो टीम विनर होगी। जी तो मेरा पहला सवाल है टीम ए से, हर्फ अलिफ से एक ऐसी जगह का नाम बताएं जहां बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। जी
स्कूल।
जी आपका जवाब दुरुस्त है।
हाँ अल्लाह।
जी अब मेरा सवाल है टीम बी से, हर्फ बा से एक ऐसी चीज का नाम बताइए जिस पर आराम किया जाता है।
बिस्तर।
जी आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह।
अब मेरा सवाल है टीम ए से, हर्फ स्वाद से पैसों के जरिए किए जाने वाले एक ऐसे अमल का नाम बताएं जिससे बलाएं टलती हैं।
सदका।
सदका। जी आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह। हर्फ मीम से ऐसी जगह का नाम बताइए जहां बच्चे कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं।
मदरसा।
जी तो टीम बी का भी जवाब दुरुस्त हो गया है,
सुभान अल्लाह। जी तो टीम ऐसे सवाल है, हर्फ सीन से ऐसी चीज का नाम बताएं जो बच्चे रोज मदरसे में सुनाते हैं। जी बताएं।
सबक।
जी तो आपका जवाब दुरुस्त है,
सुभान अल्लाह।
टीम बी से सवाल है, हर्फ ता से नमाज की एक शर्त का नाम बताइए। कौन बताए? टीम बी। नमाज की छह शराइत है ना, उसमें से एक शर्त का नाम बताए जो ता से शुरू होती है। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है, सही माशाल्लाह। टीम ए से सवाल है, हर्फ नून से एक ऐसी इबादत का नाम बताइए जिसे अंधेरी कब्र का चराग कहा जाता है। हर्फ नून से एक ऐसी इबादत का नाम बताइए जिसे अंधेरी कब्र में कब्र का चराग कहा जाता है। जी आप बताइए।
नमाज।
माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अब टीम बी से सवाल है, हर्फ गाफ से एक ऐसे अमल का नाम बताइए जो हमें आप जनाब से करनी चाहिए। जी बताएं।
गुफ्तगू।
जी सही जवाब, मान लेते हैं, माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ए से सवाल, हर्फ मीम से एक ऐसे जायके का नाम बताएं जो दरिया के पानी का होता है। हाँ जी आप बताएं।
मीठा पानी।
हाँ मीठा पानी, सुभान अल्लाह आपका भी जवाब
दुरुस्त हो गया,
दुरुस्त है,
सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। टीम बी से आखिरी सवाल है और ये सवाल फैसला करेगा कि कौन सी टीम जीतने वाली है, विनर कौन सी टीम है। आखिरी सवाल आपसे है कि हर्फ नून से ऐसी चीज का नाम बताएं जो जन्नत में जाने का जरिया है। जी आप बताइए।
नेकी।
माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है,
सुभान अल्लाह।
इस तरह दोनों के पांच पांच पॉइंट होकर दोनों का ट्राई हो गया। جی ماشاء اللہ، اللہ علم نافع عطا فرمائے،
آمین. ماشاء اللہ بچوں نے بڑے ہی شاندار مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں ہونے والے سوالات اور جوابات کے ذریعے ہم نے نئی نئی باتیں بھی سیکھی ہیں. فہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہم بچوں کو انفارمیٹیو باتیں بھی بتائیں. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بچے اور بڑے کا وقت اختتام کو پہنچائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کڈز مدنی چینل، دعوت اسلامی،
زندہ باد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم.
بچے اور بڑے کانوں کی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے،
بات ہے
بچے اور بڑے.